यह हर्ष और पूर्व मध्य काल शैव धर्म के विकास का यह एक समुन्नत काल था। इस समय उत्तर भारत के राजवंश प्रायः शैव धर्मानुयायी थे। बांसखेड़ा ताम्रपत में हर्ष को परम माहेश्वरो महेश्वर इव संबोधित किया गया है। वेनशांग नामक चीनी यात्री जो इस समय भारत में आया था, उसने इस धर्म का प्रधान केंद्र वाराणसी बताया है। उसके अनुमान के अनुसार उस समय वहां 100 शिव मंदिर थे तथा लगभग 1000 से अधिक लोग शैव धर्मानुयायी थे। हर्ष का समकालीन शासक बंगाल का गौड़ाधिपति शशांक तथा आसाम का भास्कर वर्मन था। ये दोनों ही शैव थे। उत्तर भारत से प्राप्त अनेक प्रशासनिक अभिलेखों में शिव की वंदना की गई है। अभिलेखों के प्रारंभ में प्रायः ओम नमः शिवाय का उल्लेख है तथा बीच में भी शिव की बड़ी ही भाव प्रधान वंदना की गई है। शैव धर्मावलंबियों के लिए शिव का स्थान अत्यंत समादृत था। एक कलचुरी अभिलेख में शिव को परब्रह्म देव देव तथा जगत गुरु कहकर संबोधित किया गया है। अन्य कलचुरी अभिलेखों में शिव की स्तुति की गई है। उदयपुर प्रशस्ति में शंभु को भुजंगमाल से सुशोभित तथा गंगाम्बु से सिक्त कहा गया है। राजपूत राजघराने के गढ़वाल, परमार, चंदेल, चौहान आदि शासकों के शैवानुयायी होने की बात उनके अभिलेखों से ज्ञात होती है। इन अभिलेखों में शिव को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। नीलकंठ, महादेव, पशुपति, उमापति, सदाशिव, परम माहेश्वर, अर्धनारेश्वर, रामेश्वर, केदारेश्वर आदि। यह प्रयोग इस देव की व्यापकता और सार्वजनिकता का बोधक है। इस समय शिव के विविध रूपों और मुद्राओं में बनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सामान्यतया जो शिवलिंग और शिव पार्वती की मूर्तियां परंपरागत रूप में प्राप्त होती हैं, अब शिव नटराज की मूर्तियां भी बनने लगी। जहां दक्षिण भारत में शिव नटराज की चतुर्भुजी मूर्तियां बनी थी जो अप्समार दैत्य पर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, वहीं बंगाल से इससे भिन्न 10 भुजी शिव की मूर्तियां इसी मुद्रा में वृषभ पर खड़े होकर नृत्य करती हुई मिली हैं। सेन राजाओं के सिक्कों पर अर्धनारीश्वर की बनी है। इसमें उमा शंकर के बाएं जंघे पर बैठी आलिंगन मुद्रा में प्रदर्शित की गई है। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि एकांत स्थानों में शैव मठों को स्थापित किया जाने लगा था। इनके व्यय के लिए राजाओं द्वारा दान दिया जाता था। राजस्थान में ऐसे अनेक मठों के होने का ज्ञान मिलता है। इनमें रहने वाले सन्यासियों की सुविधा के लिए तालाब, उद्यान आदि भी बने थे। इसके वासियों की व्यवस्था के लिए गांव दान दिया जाता था। कभी कभी ये मठ शिव मंदिर के पास ही बनाए जाते थे। इनका उद्देश्य था कि शैव योगी यहाँ रहकर साधना कर सके। इस समय शिव मंदिर भी बनने लगे थे जो गुप्त काल से मिलने लगे थे। पाल शासक नारायण पाल देव यद्यपि बौद्ध धर्मानुयायी था, पर प्राप्त वर्णन के अनुसार उसने 1000 शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो में अनेक शैव मंदिर बनवाए थे, जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर अपनी एक अलग महत्ता रखता है। चेदी तथा परमार शासकों के अभिलेखों में भी शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। चालुक्य नरेश भीम शैवोपासक था। उसने गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बनवाया था। जब उसको महमूद गजनवी ने तोड़ा तो कुमार पाल ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। इसी प्रकार बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि सभी जगह शिव मंदिर थे। साहित्यिक साक्ष्यों से भी शैव धर्म के प्रसार पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। शंकर ने ब्रह्म सूत्र पर व्याख्या करते हुए कहा है कि शैवों का कहना कि शिव ही संसार से के निमित्त कारण है उचित नहीं प्रतीत होता। यह सृष्टि ज्ञान के सिद्धांत के विरोध में है। भामती नामक ग्रंथ में मित्र मिश्र ने बताया है कि माहेश्वर चार वर्गों में विभक्त थे, शैव, पाशुपत, कालुड़िक, सिद्धांतिक और कापालिक। शिव पुराण, लिंग पुराण तथा कुर्म पुराण में पौराणिक शैव धर्म की चर्चा प्राप्त होती है। इसमें वैदिक विचारों की प्रधानता नहीं है, बल्कि व्यवहारिक क्रियाओं की ही प्रधानता है। इसे स्मार्ट शैव धर्म का कहा जा सकता है। इसकी व्यापक चर्चा कुर्म पुराण से प्राप्त होती है। इस समय शैव धर्म में तांत्रिक प्रभाव पड़ने लगा था, जिसका ज्ञान कुंजी कामत तंत्र नामक पांडुलिपि से प्राप्त होता है। आगम शैव धर्म में इसका विशेष प्रभाव दिखता है। डॉक्टर फारूक खार के अनुसार आगम से स्पष्ट है कि शाक्तों के तांत्रिक विचार शैव धर्म से समन्वित होने लगे थे। इनके ग्रंथ आगमों की रचना भी इसी समय हुई। इस समय पाशुपत संप्रदाय में तीन विभाग थे, लकुलिश, कापालिक और कालामुख। दूसरा संप्रदाय विकसित हुआ, वीर शैव या लिंगायत। तीसरा संप्रदाय कश्मीरी शैव संप्रदाय का भी प्रारंभ यहीं से हुआ। एक, लकुलिश संप्रदाय। लकुलिश संप्रदाय के संस्थापक थे लकुली, जिनकी चर्चा पहले की गई है। इनकी अनेक मूर्तियां इस समय की प्राप्त हुई हैं। लाट और राजस्थान इस उप संप्रदाय के महत्वपूर्ण केंद्र थे। वायु पुराण में लकुली को शिव का 18वां अवतार बताया गया है। इस संप्रदाय के अनेक आचार्य थे, जिनकी सूची पाशुपत सूत्र नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। विनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि इसके प्रमुख केंद्र थे केदार प्रयाग, श्री पर्वत, रामेश्वर, प्रभास क्षेत्र आदि। दो, कापालिक संप्रदाय। कापालिक तांत्रिक भावना से पूर्ण प्रभावित थे। ये तांत्रिकों की तरह खोपड़ी में खाना खाते थे, उसी में पानी पीते थे, अतः ये खोपड़ी को सदा अपने साथ रखते थे। ये अतड़ियों की माला पहनते थे या उसको अपने साथ लिए रहते थे। विनसांग ने इनका प्रमुख स्थल कपिशा बताया है। लेवी के अनुसार मध्य एशिया में यहूदियों के बीच भी यह परंपरा व्यापक थी। शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ में इनका प्रधान केंद्र उज्जैन बताया गया है। इनकी दो शाखाओं का ज्ञान मिलता है, ब्राह्मणवादी तथा अब्राह्मणवादी। ब्राह्मणवादी कापालिक जाति प्रथा और वेद को मानते थे, पर अब्राह्मणवादी इन दोनों के विरोधी थे। अब्राह्मणवादी कापालिकों की प्रधानता दक्षिण भारत में ही थी। ये नरबलि चढ़ाते थे। भवभूति के मालती माधव नामक ग्रंथ में इसी प्रकार के एक कापालिक पुजारी अघोर घंट का उल्लेख मिलता है। तीन, कालामुख संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय का एक दूसरा उप संप्रदाय कालामुख है। ये कापालिकों के ही समीप थे, किंतु कापालिकों का सर्वाधिक अतिधर्मी मार्ग इसे माना जा सकता है। इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए निम्न क्रियाओं की प्रधानता थी। एक, कपाल में भोजन करना। दो, श्मशान पर जले हुए शव का भस्म अपने शरीर में लगाना। तीन, श्मशान की राख तथा घृणित पदार्थ खाना। चार, दंड धारण करना। पांच, सुरा पात्र सदा साथ रखना। छह, ईश्वर को इसी के अंदर स्थापित मानकर उसकी पूजा करना। सात, भैरों को प्रधान उपास्य देव मानना। आठ, एक हाथ में नर कपाल तथा दूसरे हाथ में लोहे का दंड रखना। नौ, सुरा और रक्त रंजित कपालों से भैरों की पूजा करना। दस, छह मुद्राओं से भगासन पर बैठकर परब्रह्म आत्मा का चिंतन करना, इस भावना से कि इससे मुक्ति प्राप्त होती है। 11, सिर पर जटाजूट रखना तथा गले में रुद्राक्ष की माला पहनना। इससे ज्ञात होता है कि यह उप संप्रदाय अत्यंत तामसी था तथा इसके अंतर्गत अत्यंत भयंकर और राक्षसी प्रवृत्ति की क्रियाएं की जाती थी। राजस्थान के दो अभिलेखों में इन कापालिकों का उल्लेख मिलता है। वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय। शैव धर्म का एक दूसरा संप्रदाय इस समय था वीर शैव। इसको लिंगायत भी कहते हैं, क्योंकि इनमें शिवलिंग को साथ रखने तथा उसकी पूजा करने की महिमा पर बल दिया गया है। ये चांदी के डिब्बे में लिंग को रखकर गले में पहने रहते थे। इसका संस्थापक कलचुरी वंशीय शासक विजय का मंत्री वशव था, जो ब्राह्मण जाति का था। इसका अधिकांश साहित्य कन्नड़ भाषा में मिलता था। अतः यह दक्षिण भारत में विशेष प्रचलित रहा होगा, पर इसकी व्यापकता का ज्ञान इस बात से होता है कि इसके आचार्यों ने रंभापुरी, उज्जैन, उखीमठ, श्रीशैल और काशी में अपनी गद्दियां स्थापित की थी। इसके 5 आचार्य जो इस धर्म के उपदेशक थे, उनके नाम हैं रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एकोरामाचार्य, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य। इनके संबंध में मान्यता है कि विशिष्ट लिंगों से इनका जन्म हुआ था। इस संप्रदाय में कुछ लिंगी ब्राह्मण भी हैं, जिनके आचार्य और पंचक नामक 2 वर्ग हैं। पीछे चलकर लिंगायतों के 4 उपवर्गों का ज्ञान मिलता है, जंगम, शीलवंत, वणिक और पंचमशाली। कश्मीरी शैव संप्रदाय। इसी समय कश्मीर में शैव धर्म एक अलग रूप में से विकसित हुआ, जिसे कश्मीरी शैव संप्रदाय कहते हैं। इसकी चर्चा आगे की जाएगी। प्रमुख शैव संप्रदायों का दार्शनिक विवेचना। 1. पाशुपत संप्रदाय। जैसा पहले कहा गया है, पाशुपत मत के संस्थापक नकुलीश या लकुलीश थे। इनके विषय में शिव पुराण से ज्ञात होता है कि नकुलीश या लकुलीश का जन्म मणौज के पास कारबत नामक स्थान में हुआ था। पश्चिमी भारत में अनेक स्थानों पर इनकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनके दाएं हाथ में नींबू फल और बाएं हाथ में लगुड़ या दंड है। लगुड़ धारण करने से इन्हें लगुडेशा या लगुडीश नाम से जाना जाता था। कुषाण सम्राट हुइश्क के सिक्कों पर अंकित लगुड़ धारे शिव की मूर्तियां लकुलीश की हैं। भगवान शंकर के 18 अवतारों में यह प्रथम अवतार माना गया है। मृगेंद्र आगम पर रचित पाशुपत सूत्र पाशुपत मत का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। पाशुपत सूत्र को महेश्वर रचित भी स्वीकार किया गया है। पाशुपत सूत्र में 168 सूत्र एवं 5 अध्याय हैं। सर्व दर्शन संग्रह में पाशुपत मत को नकुलीश पाशुपत नाम से भी संबोधित किया गया है। इसमें नकुलीश के ग्रंथ से कुछ उद्धरण भी दिए गए हैं। इस शब्द से प्रकट होता है कि लकुसीन लकुट लगुड़ या लकुल धारण करने वाला नाम का एक व्यक्ति हुआ था, जिसने पाशुपत मत की स्थापना की थी। पाशुपत मत से 4 संप्रदाय निकले, जिनके प्रवर्तक लकुलीश के शिष्य थे। डॉक्टर भंडारकर का मत है कि लकुलीन या नकुलीन एक ही है, इन्हीं का नाम लकुलीश भी है। पुराणों में उनका वासुदेव कृष्ण के समकालीन का जो वर्णन है, उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वासुदेव संप्रदाय में जो स्थान पांचरात्र का है, वह स्थान शैव धर्म में पाशुपत मत का है। सुप्रसिद्ध पाशुपत संप्रदाय के विवेचना करते हुए शंकराचार्य ने निम्न 5 सिद्धांत बतलाए हैं। 1. कार्य प्रधान से उत्पन्न महत आदि। 2. कारण ईश्वर या महेश्वर और प्रधान। 3. योग ओम का जप, ध्यान, समाधि आदि। 4. विधि प्रातः मध्यान एवं संध्या समय भस्म लेपन एवं गुढ़चर्या आदि। 5. दुखांत मोक्ष। माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में पाशुपत दर्शन के प्रसंग में इनकी निम्न व्याख्या की है। 1. कार्य वह है जो स्वतंत्र नहीं होता, वह 3 प्रकार का होता है, विद्या, अविद्या, पशु, जीव। विद्या पशु का गुण स्वीकार किया गया है, यह 2 प्रकार का है, बोध स्वभाव और दूसरा अबोध स्वभाव। बोध स्वभाव विद्या 2 प्रकार के हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त बोधात्मक व्यक्त विद्या चित्त कहलाती, क्योंकि बोधात्मक प्रकाश की सहायता से जिस वस्तु का व्यक्त अथवा अव्यक्त प्रत्यक्ष किया जाता है, उसका सम्यक ज्ञान चित्त से ही होता है। अबोध स्वभाव विद्या के 2 रूप हैं, धर्म और अधर्म, जिनके लिए जीव यत्नशील होता है। अबोध स्वभाव विद्या उन नियमों को निर्धारित करती है, जिनका जीव को पालन करना होता है। चेतन के अधीन जो अचेतन पदार्थ होता है, उसे कला कहा गया है। कला भी 2 प्रकार का है, कारण रूपा कला और कार्य रूपा कला। कारण रूपा कला में 13 इंद्रियों का अंतर्भाव है। कार्य रूपा कला में पृथ्वी आदि 5 महाभूतों तथा उनके गुणों का अंतर्भाव स्वीकार किया गया है। पशु का अर्थ यहाँ जीव लिया गया है। जीव को दो कारणों से पशु कहा गया है। एक, जीव देखता पश्यति, इसलिए वह पशु है। दो, वह पाश बंधन में है, इसलिए पशु है। पशु दो प्रकार का स्वीकार किया गया है, एक मलयुक्त, दूसरा निर्मल। शरीर और कलाओं से संबंध पशु मलयुक्त कहा गया है, जबकि इनसे असंबंध को निर्मल पशु कहा गया है। दो कारण, पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत समस्त वस्तुओं की सृष्टि संहार तथा अनुग्रह करने वाले तत्वों को कारण कहा गया है। यद्यपि यह एक ही है, फिर भी गुण और कर्म के भेदों से साथ अनेक रूपों का हो जाता है। पति का अर्थ ज्ञान एवं क्रिया का निरतिमय शक्तियों से संपन्न होना स्वीकार किया गया है। जीवों में व्याप्त होने के कारण वह पति कहा गया है, और वह जीवों की रक्षा करता है, इससे भी पति कहा गया है। तीन, योग। चित्त के द्वारा आत्मा और ईश्वर के बीच होने वाले संबंध को पाशुपत संप्रदाय में योग कहा गया है। क्रियात्मक एवं क्रियोपरम योग के दो भेद बताए गए हैं। क्रियात्मक योग जप ध्यान आदि क्रिया के द्वारा होता है, तथा क्रियोपरम क्रिया से ऊपर योग एकांतिक भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा होता है। चार, विधि। पाशुपत संप्रदाय में विधि का अर्थ महेश्वर की प्राप्ति करने वाला साधन माना गया है। यह दो प्रकार का है, और प्रधान व गौड़। अ प्रधान, जो साक्षात धर्म का कारण है, उसे प्रधान विधि कहा गया है। इसे चर्या भी कहा गया है। इसके दो प्रकार हैं, क व्रत और ख द्वार। क व्रत, भस्म से स्नान, भस्म में शयन, उपहार, नियम, जप एवं प्रदक्षिणा व्रत कहे गए हैं। भगवान लकुलिश ने कहा है, भस्म से तीन समय प्रातः, मध्यान्ह एवं संध्या स्नान करना चाहिए, और भस्म में ही शयन करना चाहिए। उपहार नियम छह प्रकार के बताए गए हैं। सूत्रकार के अनुसार हसित, गीत, नृत्य, हुडुंकार, नमस्कार, इन उपहारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। कंठ एवं ओष्ठ पुटों के विस्फुरण के साथ हा 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 इस प्रकार का अट्टहास करना हसित है। संगीत विद्या के नियमानुसार महेश्वर के गुणों का गान करना गीत कहा गया है। नाट्य शास्त्र के नियमानुसार हाव भाव के साथ कर, चरण आदि एवं अंग प्रत्यंग तथा उपांगों के विक्षेपण आदि करना नृत्य कहते हैं। हुडुंकार उस पुण्य प्रद शब्द को कहा गया है, जो जिह्वा और तालु के संयोग से उच्चरित होता है। यह वृषभ के नाद के समान होता है। हुडुक वास्तव में वसट के तरह की ध्वनि है। जहाँ पर लोग उपस्थित हो, वहाँ पर इन सब का प्रयोग गुप्त रूप से करने का निर्देश दिया गया है। ख द्वार, द्वारचर्या के निम्नलिखित हैं। एक, क्राथन, जागृत अवस्था में सोए हुए व्यक्ति के समान चेष्टाएं करना। दो, स्पंदन, अंगों को इस प्रकार कंपाना जैसे कि वे शक्तिहीन हो। तीन, मंदन, लंगड़ा कर चलना। चार, श्रृंगारण, किसी सुंदर युवती को देखकर कामुक के समान श्रृंगारिक हाव भाव द्वारा अपने को प्रेमासक्त दिखलाना। पांच, अवितत्करण, सभी लोगों द्वारा निंद्य कार्य को इस भांति करना जैसे कि करणीय अकरणीय में भेद करने की बुद्धि ही न हो। छ, अवितद भाषण, इसका अभिप्राय परस्पर विरोधी और निरर्थक बातें करने से है। ब गौड़, गौड़ विधि के अंतर्गत अणु स्नान अर्थात पूजा के उपरांत भस्म स्नान करने से है। इस भस्म से अनित्यता का निवारण हो जाता है, इसलिए पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत पूजा के उपरांत भस्म का लेप करने का विधान है, तथा देवता पर से हटाए कुमलाए हुए पुष्प पत्र निर्माल्य और लिंग धारण करने का विधान है। पांच, दुखांत, अन्य हिंदू धर्मों की भांति पाशुपत संप्रदाय से भी मुक्ति या मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। पाशुपत सिद्धांतों के अनुसार दुखांत दो प्रकार के होते हैं, एक अनात्मक दुखांत जिसमें संपूर्ण दुखों का पूर्णतया क्षय होता है। दो, सात्मक दुखांत जिनमें ज्ञान और धर्म कर्म की शक्ति से युक्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान शक्ति पांच प्रकार की होती है। एक, दर्शन सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुओं का चाक्षुष स्पर्श आदि ज्ञान। दो, श्रवण समस्त शब्दों का सिद्धि ज्ञान। तीन, मनन समस्त चिंत्य पदार्थों का अद्भुत ज्ञान। चार, विज्ञान शास्त्रों के विषयों को ग्रंथ पंक्ति और अर्थ के साथ ज्ञान लेना। पांच, सर्वज्ञत्व गुरु के द्वारा प्रदत्त एवं प्रकाशित तत्व ज्ञान। इस मत की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। जबकि अन्यान्य मतों में दुखक क्षय को ही मोक्ष स्वीकार किया गया है, वहां इस मत में परम शक्तियों की प्राप्ति को भी इसी में निहित कर लिया गया है। अन्य मतों के अनुसार कार्य असत से उत्पन्न होता है, परंतु इस मत में कार्य नित्य स्वीकार किया गया है, उदाहरणार्थ पशु या जीवात्मा। अन्य मतों के में कारण को अपने कारणत्व के लिए सहायक कारण की अपेक्षा होती है, परंतु यहाँ पर महेश्वर स्वतंत्र रूप से कार्यरत माने जाते हैं। अन्य मतों में योग के फल पूर्ण स्थिति की प्राप्ति है, जबकि यहाँ योग का उद्देश्य परम शक्तियों को प्राप्त करना माना गया है। पाशुपत मत में विधि के फल का सामिप्य है, जहाँ से पुनः लौटने की अवस्था नहीं आती, जबकि अन्य मतों में विधि के फल स्वर्ग आदि है, जहाँ से मर्त्य को पुण्य का भोग भोग कर पुनः वापस आना पड़ता है। पाशुपत संप्रदाय में दुखांत सिद्धांत के अंतर्गत क्रिया शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। इस संप्रदाय में क्रिया शक्ति एक होते हुए भी त्रिविध मानी गई है। एक, मनोजवित्य इस शक्ति से किसी भी कार्य को तक्षण कर लिया जाता है। दो, काम रूपित्व इच्छा मात्र से अनंत रूप शरीर या इंद्रिया धारण करना काम रूपित्व शक्ति है। तीन, विकरण धर्मित्व यह शक्ति है जो इंद्रिय व्यापार निरुद्ध हो जाने पर भी निरतिशय ऐश्वर्य से संपन्न रखता है। इस प्रकार पाशुपत संप्रदाय में बताए गए मार्ग द्वारा निर्धारित लंबी चर्या के अंत में मनुष्य ज्ञान एवं क्रिया की सिद्धियों को प्राप्त करता है। दो, काश्मीरी शैव मत। काश्मीरी शैव मत अन्य शैव संप्रदायों से अधिक मानवीय एवं युक्ति संगत है। काश्मीर प्रदेश में इसका विकास होने के कारण इसका नाम काश्मीरी शैव मत पड़ा तथा इसके संप्रदाय का नाम काश्मीरी शैव संप्रदाय पड़ा। काश्मीरी शैव दर्शन को प्रत्यभिज्ञा दर्शन, त्रिक दर्शन तथा माहेश्वर दर्शन भी कहा गया है। इस मत में 10 शैवागम, 18 रुद्रागम और 64 भैरवागम अर्थात 92 आगमों की मान्यता है। इन आगमों में जिनको विशिष्ट स्थान प्राप्त है वे सिद्धा और मालिनी हैं। काश्मीरी शैव मत के मूल प्रवर्तक के रूप में वसुगुप्त का नाम उल्लेखनीय है। उनका काल 825 ईस्वी स्वीकार किया गया है। इनके प्रमुख ग्रंथ शिव सूत्र और स्पंद कारिका हैं। सोमानंद और कल्लट वसुगुप्त को तो प्रमुख शिष्य थे। काश्मीरी के शैव मत का त्रिक दर्शन इसलिए कहा गया है कि इसमें पति पशु और पास इन तीन तत्वों का वर्णन है, अथवा तीन आगमों सिद्धा नामक तथा मालिनी का विशेष महत्व है। काश्मीरी शैव मत के दर्शन दो रूपों में वर्णित किए गए हैं, एक स्पंद दर्शन तथा दूसरा प्रत्यभिज्ञा दर्शन। कल्लट ने स्पंद सिद्धांत को इस ढंग से विकसित किया है कि उसके नाम पर इस दर्शन को स्पंद दर्शन के नाम से पुकारा गया है। इसी प्रकार सोमानंद ने प्रत्यभिज्ञा को इतने प्रभावशाली ढंग से मोक्षोपाय के रूप में वर्णित किया है कि इस मत को प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहा जाने लगा। यद्यपि स्पंद दर्शन और प्रत्यभिज्ञा दर्शन की मूल दार्शनिक दृष्टि एक ही है, तथापि उनमें कुछ अंतर भी है। अतः ये शैव मत के दो संप्रदाय माने जाते हैं। स्पंद शास्त्र में मोक्ष के तीन उपायों का वर्णन किया गया है, आड़व सांभव और शाक्त। इनके लिए योगाभ्यास की आवश्यकता बताई गई है। परंतु प्रत्यभिज्ञा शास्त्र में एक चौथा उपाय भी माना गया है, जिसे प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। वास्तव में प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है अपनी आत्मा को पहचानना। इस ज्ञान के मार्ग में योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं है। तत्व शैव दर्शन का वास्तव में एकमात्र तत्व शिव है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी एक तत्व से अन्य सभी तत्वों की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्त तत्वों को लेकर शैव दर्शन में निम्नलिखित तत्व माने गए हैं। सांख्य दर्शन के स्थूल भूतों से लेकर प्रकृति तथा पुरुष तत्व पर्यंत 25 तत्वों को उसी क्रम में शैव दर्शन भी मानता है। अंतर केवल इतना है कि सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति नित्य और स्वतंत्र है, किंतु शैव दर्शन में ये अनित्य और परतंत्र है। प्रकृति तत्व यहाँ माया के नाम से प्रसिद्ध है। इसके साथ 5 तत्व हैं: एक कला, दूसरा विद्या, तीसरा राग, चौथा काल, पांचवा नियति। ये माया के 5 कंचुक स्वीकार किए गए हैं। इन 5 तत्वों के अंतः प्रवेश करने से इनके स्वरूप का स्पष्टतः ज्ञान हो जाता है और माया से मुक्ति मिल जाती है। इसके पश्चात माया की अपेक्षा दूसरे सूक्ष्म तत्व में साधक प्रवेश करता है और शुद्ध सत्व विशिष्ट पुरुष शुद्ध विद्या के रूप में साधक को दिखाई पड़ने लगता है। शैव दर्शन में इसी को सद्विद्या कहा जाता है। सद्विद्या तत्व ईश्वर तत्व में लीन हो जाता है और साधक को ईश्वर तत्व के अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार ईश्वर तत्व सदा शिव तत्व शक्ति तत्व में तथा शक्ति तत्व परम शिव तत्व में परिणत हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक शिव शक्ति के सामरस्यता का अनुभव करता है। शैव दर्शन में काश्मीर शैव दर्शन की यही पूर्णावस्था एवं परम लक्ष्य है। शैव दर्शन के 36 तत्व निम्नलिखित हैं: सांख्य दर्शन में प्रकृति से क्रमशः तत्वों की अभिव्यक्ति होती है, जिसका स्वरूप निम्नतः निरूपित किया जा सकता है। शिव के दर्शन तत्व सांख्य के 26 तत्व: मूल प्रकृति, बुद्धिया, महत, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मनस। ज्ञानेन्द्रिय श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। कर्मेन्द्रिय वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ। मनस शब्द तन्मात्र, आकाश। स्पर्श तन्मात्र, वायु। रूप तन्मात्र, तेजस। रस तन्मात्र, जल। गंध तन्मात्र, पृथ्वी। सांख्य दर्शन के ये 24 तत्व हैं। इनके अतिरिक्त एक पुरुष तत्व है। ये दोनों मिलकर सांख्य दर्शन के 25 तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त काश्मीरी शैव दर्शन के निम्नलिखित 11 तत्व और हैं: एक माया, दो कला, 3 विद्या, 4 राग, 5 काल, 6 नियति, 7 शिव, 8 शक्ति, 9 सदाशिव, 10 ईश्वर, 11 शुद्ध विद्या, सद्विद्या। इस तरह काश्मीरी शैव दर्शन के कुल 25 सांख्य के प्लस 11 नए बराबर 36 तत्व हैं। इस शिव तत्व चैतन्यमात्मा शिव सूत्र से ज्ञात होता है कि प्रत्येक जीव में रहने वाला शिव तत्व ही आत्म तत्व है। यह चैतन्य रूप है। काश्मीर शैव दर्शन में इसी को परासंवित परमेश्वर शिव या परम शिव भी कहा गया है। इस दर्शन में यह स्वीकार किया गया है कि यह तत्व न केवल जीव में ही है, प्रत्युत जितनी वस्तुएं संसार में हैं, जड़ या चेतन, सभी में व्याष्टि तथा समाष्टि रूप से वर्तमान है। ऐसी धारणा है कि अनंत वस्तुओं में रहने पर भी यह एक है और एक रूप में सभी वस्तुओं में है। यह देश और काल से अतीत होते हुए भी सभी देशों में तथा कालों में एक रूप में वर्तमान है। शिव तत्व नित्य और अनंत है। शिव तत्व समस्त विश्व में व्यापक रूप में है और विश्वातीत भी है। इस तरह काश्मीरी शैव दर्शन में यह भी स्वीकार किया गया है कि समस्त विश्व इसी तत्व का अभिन्न रूप है। परम शिव स्वयं 36 तत्वों के रूप में जगत में भाषित होता है। विश्वोत्तीर्ण, विश्वात्मक, परमानंदमय तथा प्रकाशकधन इस शिव तत्व का ही अपने से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत तत्व अभिन्न रूप में स्फुरण है। अखिलम अभेदेनैव स्फुरत, अखिलम अभेदेनैव स्फुरित। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस तत्व के अतिरिक्त वस्तुतः और कुछ भी ग्राह्य या ग्राहक रूप में नहीं है। यही परम शिव भट्टारक नाना वैचित्र्यों के रूप में स्वयं स्फुरण होता है। इस प्रकार शिव तत्व इच्छा ज्ञान तथा क्रियात्मक है एवं पूर्णानंद स्वभाव का है। विमर्श शक्ति तत्व, विमर्श शक्ति तत्व प्रकाशात्मा है, अर्थात विमर्श ही इसका स्वभाव है। सृष्टि अवस्था में विश्वाकार होने में से स्थिति में विश्व को प्रकाशन द्वारा संहार में आत्मसात करने से शिव में पूर्ण जो अकृत्रिम अहंभाव है उसी को विमर्श शक्ति कहते हैं। यदि विश्व में विमर्श शक्ति न हो तो वह अनिश्वर तथा जड़ हो जाएगा। आगमों में विमर्श को चित चैतन्य परावाक परमात्मा का मुख्य ऐश्वर्य कर्तृत्व स्फुरता आदि शब्दों से वर्णित किया गया है। काश्मीरी के शैव दर्शन में विमर्श शक्ति तत्व को अनंत स्वरूप में स्वीकार किया गया है, किंतु इनमें पांच स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक, चित शक्ति, यह प्रकाशन रूप है, इसी के द्वारा शिव अपने को स्वप्रकाश स्वीकार करते हैं। दो, आनंद शक्ति, जिसके द्वारा शिव आनंद में है और अपने में आनंद का साक्षात्कार करते हैं। तीन, ज्ञान शक्ति, जिसके कारण शिव स्वयं ज्ञान स्वरूप है। चार, क्रिया शक्ति, ऐसा माना जाता है कि इसके कारण शिव सभी स्वरूप को धारण कर सकते कर सकने में सफल होते हैं। पांच, इच्छा शक्ति, इसी शक्ति के द्वारा शिव जगत की सृष्टि संहार और अन्य सभी कार्य करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि काश्मीरी शैव दर्शन शिव शक्ति के इन पांच स्वरूपों से युक्त होकर अपने आप समस्त विश्व की अभिव्यक्त करता है। इस दर्शन के अनुसार जगत शिव की शक्ति का ही विस्तृत रूप है, जिसे परम शिव ने अपनी इच्छा से अभिव्यक्त किया है। इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि शक्ति के अभाव में शिव जड़वत ही है। शक्ति के कारण ही शिव अपने में अहम का बोध करते हैं। शंकराचार्य ने भी निम्न मत व्यक्त किया है, शिवः शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवा न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। परंतु यह भी सत्य है कि शक्ति बिना शिव के नहीं रह सकती और न कुछ कर ही सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव शक्ति अभेद है, तादात्म्य है, सामरस्य है, तभी तो परम शिव पूर्ण है, सदा शिव तत्व। जब परम शिव शक्ति में उन्मेष होता है तब सृष्टि होती है, और जब वह आँख मूंद लेती है तब जगत का लय हो जाता है। यह उन्मेष और निमेष अनादि और अनंत है। इसी उन्मेष के कारण सदा शिव तत्व की भी अभिव्यक्ति होती है। शैव दर्शन में यह शक्ति तत्व के प्रथम और स्थूल उन्मेष के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे सदाख्य तत्व भी कहा गया है। शैव दर्शन में सृष्टि शक्ति का उन्मेष है, अर्थात जो वस्तु पहले से थी उसी की अभिव्यक्ति होती है। यह अंतर्वती निमेष है। ईश्वरो वाहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदा शिवः। इस अवस्थ में इच्छा शक्ति की प्रधानता रहती है, क्योंकि इदम् अंश अस्फुट रहता है और अहम् अंश प्रधान रूप में उसे आच्छादित किए रहता है। इसलिए मैं हूँ इस प्रकार की प्रतीति होती है, अर्थात जगत का अव्यक्त रूप में यहाँ भान होता है। ईश्वर तत्व, काश्मीरी शैव दर्शन के ईश्वर तत्व से जगत की क्रमिक अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है। इस तत्व में अहम अंश गौड़ होता है और इदम अंश की प्रधानता रहती है। इदम अहम इस प्रकार की प्रतीति विमर्श शक्ति में उल्लसित होते हैं। यहाँ ज्ञान शक्ति की प्रधानता स्वीकार की गई है। शुद्ध विद्या या सद्विद्या, शुद्ध विद्या या सद्विद्या में अहम और इदम रूपों में ऐक्य की प्रतीति रहती है। मैं यह हूँ यही भावना इस भूमि में जागृत रहती है। इस तत्व में क्रिया शक्ति प्रधान है। माया तत्व कश्मीरी शैव दर्शन के माया तत्व में अहम अंश पुरुष रूप में तथा इदम अंश प्रकृति रूप में अभिव्यक्त होता है। इस दर्शन में अचित अर्थात जड़ में प्रमात्रित्व का आभास होता है। यह कला आदि पांच भावों का उपादान कारण है। माया तत्व कश्मीरी शैव दर्शन में माया तत्व में अहम अंश पुरुष रूप में तथा इदम अंश प्रकृति रूप में अभिव्यक्त होता है। इस दर्शन में अचित अर्थात जड़ में प्रमात्रित्व का आभास होता है। यह कला आदि पांच भावों का उपादान कारण है। कश्मीरी शैव दर्शन में माया शक्ति के द्वारा परमेश्वर अपने रूप को आच्छादित कर लेते हैं, तभी वह पुरुष तत्व होकर पृथक हो जाते हैं। वह माया से मुक्त कर्मों को अपना बंधन समझता हुआ संसारी पुरुष है, परंतु परमेश्वर से अभिन्न होता हुआ भी इसका मोह परमेश्वर में नहीं होता। माया के पांच कंचुक कश्मीरी शैव दर्शन का परम शिव सर्वकर्ता सर्वज्ञ पूर्ण नित्य व्यापक असंकुचित शक्ति संपन्न होता हुआ भी अपनी इच्छा से संकुचित होकर कला विद्या राग काल तथा नियति माया के इन पांच कंचुकों के रूप में व्यक्त होता है। पांच कंचुकों के कारण क्रमशः परम शिव के उपर्युक्त गुणों में संकोच हो जाता है। अतएव कश्मीरी शैव दर्शन के पुरुष का कुछ भी करने का सामर्थ्य कुछ भी जानने का सामर्थ्य अपूर्णता का बोध अनित्यता का बोध तथा संकुचित शक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पुरुष तत्व कश्मीरी शैव दर्शन में पांच कंचुकों के आवरण से आवृत चैतन्य को पुरुष तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। पांच कंचुकों के आवरण को स्वीकार कर पुरुष संसारी हो जाता है। परम शिव के स्वरूप को आवृत करने के कारण ये कंचुक कहे गए हैं। प्रकृति तत्व इस दर्शन में महत से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत सभी तत्वों का मूल कारण प्रकृति तत्व है। यह तत्व सत्व रज और तम की साम्यावस्था है। इस अवस्था में गुणों में प्रधान गौणाभाव नहीं होता। ये गुण प्रकृति तत्व में परस्पर विभक्त नहीं है। बुद्धि तत्व स्वरूप को निश्चित करने वाला तत्व बुद्धि तत्व है, अर्थात यह ऐसा है इस प्रकार निश्चित करने वाला बुद्धि तत्व है। सत्व प्रधान होने के कारण यह तत्व स्वच्छ है। इस तत्व में ही चैतन्य के प्रतिबिंब को ग्रहण करने की क्षमता है। अहंकार तत्व अपने पराये तथा अहम को बोध कराने वाले तत्व को ही इस दर्शन में अहंकार तत्व कहा गया है। यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, इस प्रकार अभिमान का साधन अहंकार तत्व है। मनस तत्व किसी कार्य के करने या न करने की प्रेरणा देने वाले तत्व को मनस तत्व कहा जाता है। किसी काम को करूं या न करूं, इस प्रकार के संकल्प और विकल्प का कारण मन स्वीकार किया गया है। यह अंतःकरण रूप तत्व है। पांच ज्ञानेन्द्रियां कश्मीरी शैव दर्शन में गंध रूप रस स्पर्श शब्द को ग्रहण करने वाली क्रमशः घ्राण जिह्वा चक्षु त्वक श्रोत्र को ज्ञानेन्द्रिय कहा गया है। अंतःकरण की अभिव्यक्ति इन्हीं में होती है। पांच कर्मेंद्रियां लौकिक आनंद विसर्ग मलत्याग विरहण चलना फिरना आदान वचन क्रमशः उपस्थ वायु पाद पाणी वाक पांच कर्मेंद्रियां स्वीकार की गई हैं। पांच तन्मात्राएं रस गंध रूप स्पर्श शब्द समान रूप के हैं। इनमें से प्रत्येक में स्वयं को छोड़कर कुछ नहीं रहता है, जिसके कारण ये तन्मात्राएं कहलाती हैं। पंचभूत अवकाश देने वाला आकाश संजीवनी वायु दाहक और पाचक अग्नि प्यास बुझाने वाला और भिगोने वाला जल तथा धारण करने वाली पृथ्वी कश्मीरी शैव दर्शन में पांच भृत तत्व हैं। जैसे पीपल बीज में शक्ति रूप में बड़ा पीपल वृक्ष विराजमान होता है, उसी प्रकार ये सभी तत्व अर्थात चराचर संपूर्ण विश्व परम शिव के हृदय रूपी बीज के अंदर शक्ति रूप में वर्तमान होते हैं। जैसे स्वर्ण के बने विभिन्न आभूषणों कर्णफूल अंगूठी कंठाहार आदि पदार्थों का वास्तविक रूप स्वर्ण ही है, उसी प्रकार पृथ्वी से लेकर व्युत्क्रम रूप में माया पर्यंत सभी तत्व सत ही है। इस सत में से भी धात्वर्थ व्यंजक प्रत्यय के अंश को छोड़ देने पर केवल प्रकृति रूप में सकार ही रह जाता है। इस तरह प्रकृति के अंतर्गत 31 तत्व होते हैं। इन तत्वों के ऊपर शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव, तत्व ज्ञान और क्रिया शक्ति स्वरूप है। ये सभी और शक्ति तत्व में अंतर्भूत हैं। इसके परे ऊर्ध्व तथा अधः लोकों के सृष्टि स्वरूप दो विसर्जनीय हैं। इस तरह के हृदय बीज के स्वभाव रूप महामंत्र स्वरूप विश्वमय अर्थात सर्वाकार एवं विश्वोत्तीर्ण अर्थात निराकार परम शिव है। व्युत्क्रम सृष्टि पृथ्वी तत्व से लेकर प्रकृति तत्व पर्यंत सांख्य के समान ही तत्व का विचार है। यही प्रकृति विशुद्ध होकर माया तत्व में विलीन हो जाती है। काश्मीरी शैव दर्शन में यह माना गया है कि परम शिव के सभी गुणों को संकुचित कर देने वाला 5 कंचुक है। पुरुष तत्व में आकर परम शिव की शक्ति संकुचित हो जाती है। इन तत्वों से परे जब सूक्ष्मतर तत्व में साधक प्रवेश करता है तब पुरुष अपने को सूक्ष्म प्रपंच जो स्थूल प्रकृति का सूक्ष्म रूप है के बराबर का समझने लगता है। ऐसी परिस्थिति में मैं यह हूँ इस प्रकार की प्रतीति उल्लसित होती है। इसमें मैं चैतन्य है और यह प्रकृति है। ऐसी अवस्था में मैं और यह दोनों बराबर महत्व के होते हैं। इसके बाद वह पुरुष सूक्ष्म प्रपंच के साथ तादात्म्य बोध करने लगता है और मैं यह हूँ ऐसी प्रतीति उसके विमर्श शक्ति में भासित होने लगती है। ऐसी अवस्था में यह अंश को प्रधानता मिलती है। काश्मीरी शैव दर्शन में इस अवस्था को ईश्वर तत्व कहते हैं। क्रमशः यह अंश मैं में लीन हो जाती है और मैं हूँ इतनी ही प्रतीति रह जाती है। वह फिर भी स्पष्ट होता है मैं और हूँ में दोनों स्वरूप विवर्ष में भाषित होता है। इस अवस्था को सदा शिव तत्व कहते हैं। जब साधक इससे भी सूक्ष्म भूमि में पहुँचता है तब उसे केवल अहम की प्रतीति दिख पड़ती है। इस तरह अहम की प्रतीति वाली अवस्था को शक्ति तत्व कहा जाता है। परम शिव की यह उन्मीलन अवस्था कही जाती है। ऐसी अवस्था में साधक परम शिव के स्वरूप को समझ सकता है। ऐसे ही समय में आत्मा के आनंद स्वरूप का प्रथम बार भान होता है कि यह शक्ति और शक्तिमान की युगल मूर्ति है। यह विभेद करना कठिन हो जाता है कि यह अवस्था द्वैत है या अद्वैत। यही अवस्था अंततः परम शिव में लीन हो जाती है जो काश्मीरी शैव दर्शन में शिव तत्व है। चिन्मय सामरस्य की अवस्था कश्मीरी शैव दर्शन की चिन्मय सामरस्य की अवस्था होती है जहाँ पहुंचकर जिज्ञासु साधक अपने अस्तित्व को परम शिव में लीन कर सकते हैं। परंतु परम शिव में लीन होने के पश्चात भी कोई तत्व अपने स्वरूप को नष्ट नहीं करता है। इस दर्शन का ऐसा विश्वास है कि सारे तत्व परम शिव में लीन होकर चिन्मय शिवमय हो जाते हैं। कश्मीरी शैव दर्शन में मनुष्य जीवन का यही परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। यह शुद्ध अद्वैत है। शिव तत्व में सभी मनुष्य चिन्मय हो जाते हैं। वास्तव में शिव शक्ति के सामरस्य की यही अवस्था है। जीवन मुक्ति स्थूल शरीर धारण करने वाले मनुष्य को जीवितावस्था में यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। ऐसे अवस्था में भी अविचल रूप में एक ही चित होता है। संविद रूपा शक्ति इस अवस्था में भी रहती है। अतएव चिदानंद का लाभ जीवन मुक्त को भी होता है। शरीर के पतन के पश्चात वह परम शिव में प्रविष्ट और उसी में लीन हो जाता है। संपूर्ण विश्व एक ही शक्ति और शक्तिमान का उल्लसित रूप है। सभी चिन्मय है। ऐसी अवस्था में परम शिव सर्वथा स्वतंत्र होकर बिना किसी की सहायता से केवल अपनी ही शक्ति से सृष्टि को लीला के लिए उद्भासित करते हैं और लीला का संवरण भी कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में साधक को एकमेव द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन तथा सर्वम खलविदम ब्रह्म का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। कश्मीरी शैव दर्शन में साधक चार्वाक भूमि से प्रारंभ कर क्रमशः एक भूमि के पश्चात दूसरी भूमि पर आकर परम तत्व के आभास का अनुभव करता हुआ सूक्ष्म जगत की तरह अग्रसर होता है, फिर धीरे धीरे परम शिव तत्व में मिलकर परम शिव के साथ एक हो जाता है।